हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे कृष्ण लीला सप्ताह के आज के तीसरे दिन में। कल हमें पूछा गया था कि तीन दिन हो गए, अब तक भगवान का दाम बंधन क्यों नहीं खुला, कि कथा स्लो मोशन में जा रही। तो हमने कहा कि भाई भगवान बंधे हुए हैं तो धीरे धीरे कथा कर रहे हैं ना, अभी वो भी लीला धीरे धीरे हो रही है। यदि भगवान खुले होते तो सब कुछ जल्दी होता, परंतु अब उखल से बंधे हुए हैं तो भगवान की लीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी धीरे धीरे लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने चर्चा की भगवान उखल से बंधे हुए दो अर्जुन वृक्षों की तरफ देख रहे हैं और उनके अनन्य भक्त नारद मुनि इनके विषय में सोच रहे हैं। देवर्षिर में प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन् महात्मना। नारद मुनि को प्रियतम कह रहे हैं, महात्मना कह रहे हैं, नारद मुनि के श्राप को गीत कह रहे हैं। और नारद मुनि का अनुग्रह अब सिद्ध करने के लिए भगवान ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे ये नलकुंवर और मणिग्रीव इन्होंने कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, क्योंकि नारद मुनि ने कह दिया है, इसलिए मुझे इनका उद्धार करना ही है। तीन कारण हमने लिए कल कि भगवान ने नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार क्यों किया। सबसे पहला कारण माता यशोदा से जो प्रेम मिला उसे बांटने के लिए, दूसरा कारण नारद मुनि के शब्दों को सिद्ध करने के लिए, और तीसरा कारण क्योंकि भगवान ने देखा कि इन दो वृक्षों का नाम है अर्जुन वृक्ष, तो भगवान को अपने सखा अर्जुन की याद आ गई। और क्योंकि केवल नाम से इनका संबंध हुआ तो भगवान ने इनका उद्धार करना सोच लिया। अब भगवान ये सोच रहे थे कि इनका उद्धार कैसे करूं, क्योंकि श्राप मिला है कि ये वृक्ष योनि में खड़े रहें, और कितने समय तक ये खड़े थे, 100 स्वर्गीय वर्ष तक ये खड़े थे। तो इसलिए इतने समय तक ये वृक्ष वहां पर खड़े रहे, तो भगवान ने सोचा कि क्योंकि मैं भी बंधन में हूं और ये भी बंधन में है, दोनों बंधन में हैं, परंतु मेरा बंधन तो अभी अभी लगा है, बहुत ताजा है ये बंधन, परंतु इनका बंधन तो इतना पुराना है, तो मैं अपने बंधन को नहीं खोलते हुए, भगवान ने पहले अपने बंधन की चिंता नहीं की कि चलो पहले मैं अपना बंधन खोलूं फिर जाकर इनका, नहीं। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं इस लीला में अपना ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों दिखाऊंगा। और ये भगवान ने दिखाया उखल को खींचते हुए। अब यह बहुत ही गहरा मुद्दा है, इसे ध्यान से आप सुनिए कि भगवान उखल को घसीट रहे हैं। अब उखल जैसे यहां पर भी आप देखोगे कोई छोटा सा उखल नहीं था, बहुत भारी बड़ा उखल था। और भगवान छोटे से, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत बड़े और भारी हो गए उस उखल को खींचने के लिए, भगवान उतने से ही छोटे से बाल गोपाल बने रहे, और माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था, तो ऐसा नहीं कि माता यशोदा कोई बहुत शक्तिशाली थी कि माता यशोदा ने बहुत गहरी या कष्टी गांठ मारी थी। माता यशोदा ने ये नहीं सोचा था कि ये अब इस उखल को घसीटकर इन दोनों वृक्षों को गिराने वाला है। आगे की लीला नहीं पता थी माता यशोदा को, यदि आगे की लीला पता होती तो बांधती क्यों? यदि ठीक है भगवान बोल भी देते कि नहीं बांधो, तो माता यशोदा कोई बड़ा रस्सा लेती बांधने के लिए, रस्सी नहीं। तो यदि इन सब मुद्दों पर हम गौर करेंगे कि भगवान छोटे से, उखल इतना बड़ा, कोई बहुत कष्टा गांठ नहीं मारा था और भगवान घसीट रहे हैं उखल को, तो यहां पर भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य, जो वृंदावन का प्रेम है माधुर्य, और जो भगवान कि भगवत्ता भगवान दिखाते हैं वृंदावन के बाहर, वो है ऐश्वर्य। तो इन दोनों को, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये उखल घसीटने में दिखा रहे हैं। कैसे कैसे ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों दिखा रहे हैं? कि उखल को घसीटना कोई साधारण बात नहीं है इतने छोटे से बालक के लिए, और वो भी इतनी दूर बाहर तक, आंगन तक, और केवल भगवान अब घसीटने ही नहीं वाले हैं, ऐसा नहीं कि भगवान सखाओं को कहे कि पीछे से धक्का मारना उखल को अकेले, भगवान ने अकेले उस उखल को घसीटा। और भगवान अपने दोनों हाथ भी नहीं लगाए रस्सी को, ऐसा नहीं कि दोनों हाथों से रस्सी को पकड़कर खींच रहे हैं और पसीना पसीना हो रहे हैं। इसका सबूत क्या है? कि यदि भगवान उखल को उस प्रकार से घसीटते तो उसकी आवाज यशोदा माई सुन लेती, तो यशोदा माई को भी सुनाई नहीं दिया कि उखल घसीटा जा रहा है। अर्थात भगवान ने अपना ऐश्वर्य इस प्रकार से दिखाया कि किसे भी पता नहीं चला, केवल कुछ छोटे से ग्वाल बाल खेल रहे थे, केवल उन्होंने देखा और उन्हें पता भी नहीं लगा, कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये भगवान को बांधा गया है, दामोदर लीला हुई है, इनको दंडित किया गया है। ये तो अपने खेल में मग्न और खेलते खेलते जैसे बच्चे कुछ देख लेते हैं यहां वहां, तो देख लिया उखल के साथ घसीट कर ले जा रहे। तो भगवान अकेले ही इस कौशल को दिखा रहे हैं, और माधुर्य इसके अंदर ऐसा है कि भगवान यदि इन दो वृक्षों का उद्धार करने के लिए निकले हैं, तो भगवान सबसे पहले अपना ऐश्वर्य उस उखल बंधन को छोड़कर अपने हाथों से दोनों वृक्षों को गिराते तो पूरा ऐश्वर्य दिखाते, परंतु भगवान ने पूरा ऐश्वर्य नहीं दिखाया। इसलिए माधुर्य यह है कि यशोदा मई ने जो बांधा हुआ है भगवान को, तो वो बंधन को वो अपने आप नहीं तोड़ पाए, तो इसमें वो माधुर्य दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य नहीं। कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है, कह रहे भाई इतने बड़े बड़े वृक्षों को यदि गिरा सकता है कोई, तो वो रस्सी को नहीं तोड़ सकता? नहीं, उसमें ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि वो माता यशोदा का बंधन है। और ये नलकुवर और मणिग्रीव, इनका जो बंधन है ये इनके कर्मों के वजह से। इसलिए भगवान जब स्वयं का बंधन अपने भक्तों के द्वारा अपनाते हैं तो उसमें ऐश्वर्य की कोई जगह नहीं रहती। परंतु जब हमारा बंधन, कर्मों का बंधन दूर करना होता है तो भगवान अपना ऐश्वर्य इस्तेमाल करते हैं। तो अब भगवान शुरू किए हैं उखल को घसीटना। हम सब इस क्षण नंद गोकुल, नंद भवन के आंगन में चलेंगे, तैयार हो जाइए, और हम सब सुखदेव गोस्वामी की कथा द्वारा कल्पना ही नहीं साक्षात देखेंगे कि भगवान अब अपने घुटनों पर, दोनों हाथ और घुटने, जैसे बच्चे घुटनों पर रेंगते हैं वैसे भगवान, कल्पना कीजिए उस मुद्रा में श्री दामोदर, और उनकी कमर से वो रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी उस उखल से बंधी हुई है। तो सबसे पहले तो इस उखल को नीचे गिराया, दिख रहा है? तो उखल को नीचे गिराया, तो यदि दिख रहा है तो फिर मैं बोलता नहीं कुछ। अब उखल को नीचे गिराया और इस प्रकार से उखल को नीचे गिराया ताकि वो तिरछा गिरे, हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं, वो गिरा नीचे। और अब भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत जोर लगा रहे थे, भगवान अपना जैसे आंगन में भगवान वहां पर रेंगते थे उस प्रकार से भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे और वो उखल धीरे धीरे पीछे भगवान के चलने लगा। वो भी व्यक्ति है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। तो यहां पर सौभाग्य देखिए इस उखल का कि ये उखल साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पर चलने का अवसर प्राप्त कर रहा है, और वो भी भगवान के केवल चरण नहीं, चरण और घुटने दोनों, दो चरण और दो घुटने। अक्सर हम यही सुनते हैं कि महाजन या भगवान के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, यहां पर उखल भगवान के घुटनों चिन्हों पर और पद चिन्हों पर। तो ये बोनस इनको मिल रहा है, दिवाली के टाइम होता ना वो, और दिवाली के दिन ही, भूल गया, दिवाली के दिन ही तो लीला हुई, तो दिवाली का बोनस। तो ये उखल का सौभाग्य देखिए। अब यदि हम इस उखल शब्द को लें तो उखल शब्द में है खल। खल किसे कहते हैं? दुष्ट व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को खल कहा जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि यदि कोई खल भी भगवान के पद चिन्हों पर चले तो वो दूसरे का उद्धारक बन सकता है। ये खल भगवान के पद चिन्हों पर चल रहा है और भगवान इन दोनों वृक्षों को स्पर्श भी नहीं करने वाले, सारा श्रेय उखल को देने वाले हैं उद्धार कराने का। देखिए, इसलिए भगवान अपनी एक लीला में कितनों को श्रेय और अपनी कृपा देते हैं। इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इसलिए हम नमन करते हैं इन भगवान का जिनके अंदर करुणा का सागर भरा हुआ है। तो सौभाग्य उखल का, अब भगवान से संबंधित जो भी इस लीला में हैं उनका परम सौभाग्य जानना बहुत आवश्यक है। जैसे यशोदा माई का परम सौभाग्य, नारद मुनि का परम सौभाग्य, ये दोनों कुबेर के पुत्र, इनका परम सौभाग्य, यहां उखल का परम सौभाग्य। और एक मुद्दा हम समझ सकते हैं कि उखल को भगवान घसीट रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उखल अपने आप भगवान के पीछे पीछे जाने लगा, नहीं, भगवान उसे घसीट रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान उस उखल को आकर्षित कर रहे थे अपनी तरफ पहले, और फिर इन दोनों वृक्षों की तरफ। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सभी जीवों को आकर्षित करे वो है भगवान। अब कई बार ये प्रश्न हमारे मन में उठता है कि यदि ये सर्व आकर्षक हैं तो मैं क्यों नहीं घसीटा जा रहा हूं इनकी तरफ। उल्टे मैं और कहीं घसीटा जाता हूं, घसीटा राम हलवाई की दुकान की तरह। तो यदि ये सर्व आकर्षक हैं तो इनके प्रति आकर्षण होना ये भी इनकी कृपा से होगा। उन्हीं की कृपा से, सर्व आकर्षक कृष्ण की कृपा से हम उनके प्रति आकर्षित हो सकेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में कहते हैं, दुर्दैवम, कि मेरा क्या दुर्दैव है कि भगवान आपने निज शक्ति, आपकी सारी निज शक्ति दे दी है आपके नामों में मुझे आकर्षण करने के लिए, मुझे आकर्षित करने के लिए, परंतु फिर भी ना अनुराग, मेरे अंदर कोई अनुराग नहीं उठ रहा आपके प्रति। अब यदि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये उनका दुर्दैव है कि वो आकर्षित नहीं हो रहे भगवान के नामों के प्रति, तो हम क्या कहें? अति दुर्दैव, अति दुर्दैव इद्रिशम इहाजनी न अनुराग। एक तो अति दुर्दैव, परंतु चैतन्य महाप्रभु तो इतना ही बोल रहे हैं कि मेरा दुर्दैव यह है कि मैं आपके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। हालांकि यह नहीं समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु आकर्षित नहीं हो रहे, उनकी नम्रता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना कहा कि मैं आपके नामों के प्रति, गुणों के प्रति, रूप के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। और हमारा अति दुर्दैव क्या है? एक तो हम आकर्षित नहीं है उनके प्रति इतना, और उसके साथ साथ स अनुराग, दूसरा अनुराग किसके प्रति है? इंद्रिय भोग, इस भौतिक संसार के प्रति। तो यहां पर ये इस उखल का सौभाग्य कि उखल आकर्षित हो रहा है भगवान के प्रति, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चले और आकर्षित रहे, वही जीवों का उद्धार कर सकता है, जैसे ये उखल करने वाला है। अच्छा, अब यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि भगवान ने अपनी कृपा एक ऐसे भक्त को दी जो कि शांत रस में है, ये उखल शांत रस में है, और यदि कोई व्यक्ति कहे कि अरे ये तो जड़ वस्तु है, परंतु भगवान के संपर्क में जो भी वस्तु या व्यक्ति आ जाता है वो जड़ नहीं रहता। जैसे जब भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए, तो भगवान श्री नरसिंह देव कहां से प्रकट हुए? एक स्तंभ से। परंतु वो स्तंभ कहां का स्तंभ था? ऐसा नहीं कि वो गरुड़ स्तंभ था किसी मंदिर का, वो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस, पापी, दुराचारी हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति के महल का स्तंभ था, जिसे बनाने के लिए हिरण्यकशिपु की कमाई लगी थी। और हिरण्यकशिपु के महल में कोई हरिनाम संकीर्तन रोज नहीं चलता था, सब प्रकार के गलत कार्य। तो हिरण्यकशिपु के महल का वातावरण हिरण्यकशिपु जैसा दूषित, और ऐसे दूषित महल का वो स्तंभ भगवान श्री नरसिंह देव ने चुना, इसलिए अब भी उसे कहते हैं वो उग्र स्तंभ, जहां पर भक्त अहोबिलंब में जाकर अभी भी वो उग्र स्तंभ है। तो भक्त वहां पर जाके उसे नमन करते हैं, क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु के महल का स्तंभ है इसलिए? नहीं, क्योंकि भगवान उस स्तंभ से प्रकट हुए इसलिए जाकर वो नमन के योग्य बन गया वो स्तंभ। एक और मुद्दा भगवान श्री नरसिंह देव की लीला में समझ में आएगा, जो हम उखल और स्तंभ से संबंधित कर रहे हैं। तो अब नंद गोकुल में भी आप जाओगे तो उखल है वहां पर, उस उखल की प्रदक्षिणा करते हैं भक्त, और नरसिंह भगवान की लीला में जब भगवान प्रकट हुए हिरण्यकशिपु के उस महल के स्तंभ से, तो भगवान अब हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, और किसी कारण के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि गोद में लेकर पुचकार रहे हैं, बेटा क्यों मस्ती करते हो इतना, उस मूड में नहीं थे भगवान। तो चीर फाड़, हिरण्यकशिपु का चीर फाड़ अपने गोद में। तो भगवान बहुत समय तक हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जैसे कि बिल्ली किसी चूहे को मारने से पहले थोड़ा मस्ती करती है, कभी पकड़ती है कभी छोड़ती है, हमने अपनी आंखों से देखा है बिल्ली करती है ऐसा, बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है कि बिल्ली थोड़ा मस्ती लेती है उस चूहे के साथ, उसे थकाती है। वैसे ही भगवान श्री नरसिंह देव जैसे कि जो शेर होता है उसे भी बिग कैट कहते हैं, तो बिग कैट बड़ी बिल्ली, तो उस प्रकार से हिरण्यकशिपु जैसे चूहे के साथ पहले भगवान थोड़ा खेल रहे। तो काफी देर तक चल रहा था वो युद्ध दोनों में। तो भगवान अब सोच रहे थे कि कहां पर बैठूं, जैसे आप देखोगे नरसिंह भगवान के चित्र में कि भगवान श्री नरसिंह देव एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो भगवान ने सोचा कि इस हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए मुझे कोई कारण भी चाहिए ना। तो भगवान ने कौन सा कारण ढूंढा कि हिरण्यकशिपु ने बहुत मेहनत कर अपना सिंहासन बनवाया था, बहुत पैसा खर्चा किया था हिरण्यकशिपु ने अपने सिंहासन बनवाने में, बहुत विशेष प्रकार के सारे हीरे मोती ये सब जड़े हुए थे, बहुत कॉस्टली था वो। तो भगवान ने सोचा कि हिरण्यकशिपु ने इतनी मेहनत की है, हालांकि ये है तो मेरे जय विजय में से ही। तो भगवान ने सोचा कि इसने स्वेच्छा से तो ये सिंहासन मुझे अर्पित नहीं किया, चलो इसके बिना इच्छा के मैं स्वीकार कर लेता हूं इसका सिंहासन बैठने के लिए, ताकि इसके तरफ से एक सेवा हो जाएगी मेरे प्रति कि चलो इस सिंहासन पर मेरे प्रभु बैठे। तो उस प्रकार की सेवा यदि हिरण्यकशिपु से हो जाएगी तो मेरे पास कारण रहेगा इसका उद्धार करने के लिए, कि मरने से पहले हिरण्यकशिपु से एक सेवा हो गई भगवान श्री नरसिंह देव के प्रति, अपना सिंहासन दे दिया बैठने के लिए। इसलिए हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि यदि हमने जीवन भर कुछ सेवा नहीं की भगवान की, तो कम से कम मरने से पहले कुछ तो हम कर सकें। जैसे हिरण्यकशिपु ने मरने से पहले अपना सिंहासन, वो भी भगवान ने जबरदस्ती वो सेवा ली। भगवान इतने कृपालु हैं कि यदि हम स्वेच्छा से सेवा नहीं भी करते हैं तो जबरदस्ती ले लेते हैं सेवा, करवा लेते हैं सेवा। तो अब हिरण्यकशिपु का सिंहासन दिव्य हो गया, पूजनीय हो गया। हिरण्यकशिपु के महल का स्तंभ, हिरण्यकशिपु के महल का सिंहासन और ये उखल, जैसे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये सब दिव्य क्योंकि भगवान से संबंधित। तो इसलिए भगवान अब इस उखल को घसीटते हुए उखल को सौभाग्यशाली बना रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और माधुर्य एक साथ इस प्रसंग में दिखा रहे हैं। अब भगवान गए इन दोनों अर्जुन वृक्षों के बीच में, तो इतने विशाल ये वृक्ष और भगवान इतने से, तो अब ये ग्वाल बाल जो वहां पर खेल रहे थे, अब इन्हें लगा कि ये आज कृष्ण कुछ गंभीर कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो भी सब अपना खेल रोक कर देख रहे हैं कि ये दोनों वृक्षों के बीच में क्यों गए कृष्ण, अब तक समझ में नहीं आया। और भगवान का प्रयोजन क्या था कि भगवान दोनों वृक्षों के बीच से गुजरेंगे और वो जो तिरछा हुआ उखल वो अटकेगा दोनों वृक्षों के बीच में, और फिर भगवान केवल एक झटका सा मारेंगे और फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो भगवान दोनों वृक्षों के बीच में गए और भगवान ने उखल को अटका दिया दोनों वृक्षों के बीच में। जैसे उखल अटका तो भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया तो ये इतने विशाल वृक्ष जो इतने वर्षों तक, जितना वर्ष तक वृक्ष खड़ा रहता है तो उसकी जड़ें और अंदर गहरी जाती हैं, तो इतने समय तक ये दो अर्जुन वृक्ष वहां पर खड़े, भगवान के थोड़े से झटके से ये दोनों वृक्ष धराशाही हुए और इतनी प्रचंड आवाज हुई, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु यहां पर यह मुद्दा बताया गया है कि अब भगवान की कृपा इतने निकट से इन्हें मिली, इनका उद्धार हुआ, इतने वर्षों तक ये बंधे हुए उस वृक्ष की योनि में, तो यहां पर यह समझ में आता है कि भगवान की कृपा, जब तक हम शुद्ध नहीं होते तब तक भगवान की वो पूर्ण अंतिम कृपा नहीं मिलती। तो यहां पर ये कितना शुद्ध हो गए थे वहां पर खड़े खड़े पश्चाताप करते हुए, भगवान की लीला दर्शन श्रवण करते हुए, तो भगवान ने देखा अब ये पूर्ण शुद्ध हो गए। इसलिए हम देखेंगे कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर अपनी अनन्या कृपा, अंततः कृपा देते हैं जब पूर्ण प्रकार से उनको शुद्ध कर लेते हैं भगवान, और वो अब तैयार हैं भगवत धाम जाने के लिए। जैसे कि गजेंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा की, यहां पर तो ये 100 स्वर्गीय वर्ष तक खड़े थे, वो भी नंद गोकुल में, नंद भवन के आंगन में, परंतु गजेंद्र उस ग्राह मगरमच्छ के साथ युद्ध कर रहे थे 1000 स्वर्गीय वर्ष तक। सोचिए कोई मगरमच्छ किसी के पैरों को अपने जबड़ों में दांतों में दबाए हुए है कितने समय तक? 1000 स्वर्गीय वर्ष। दोनों में द्वंद्व चल रहा था। गजेंद्र के विषय में बताया गया है क्या हाल। गजेंद्र तो भगवत धाम गए ही, परंतु वो मगरमच्छ उसका भी उद्धार हो गया। अब उस मगरमच्छ का कोई इतिहास नहीं बताया गया, गजेंद्र का इतिहास बताया गया है, परंतु भगवान का सुदर्शन मगरमच्छ को स्पर्श होना यह भी मगरमच्छ का सौभाग्य है। सुदर्शन, उसका दर्शन होना लेना चाहेंगे कोई? तो यह मुद्दा बताया गया है कि वो मगरमच्छ एक भक्त के चरण को स्पर्श कर रहा था। तो सोचिए कि यदि एक मगरमच्छ जैसा जानवर, हालांकि वो बहुत प्रतिकूल भाव में स्पर्श कर रहा था, वो काट रहा था, तो यदि कोई भगवान के भक्तों के चरणों को यदि काटता भी है तो उसका बंधन कट जाता है। तो सोचिए यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की वंदना करे तब क्या होगा? सोचने की बात है। तो गजेंद्र को कृपा मिली 1000 स्वर्गीय वर्षों के पश्चात। अहिल्या देवी, इनकी भी कथा हम जानते हैं, इन्हें पत्थर बना दिया गौतम ऋषि ने, और कितने समय तक, पूरे एक युग, पूरा एक युग प्रतीक्षा करनी पड़ी। शबरी, उनको वरदान मिला था, कितने वर्षों, सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने प्रतीक्षा की कब उनके प्रभु राम आएंगे। तो इन सब का उदाहरण यदि हम देखें, अहिल्या, गजेंद्र, शबरी, यहां पर क्या समझ में आता है? पेशेंस, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जब तक धैर्य नहीं अंदर, तब तक भगवान अपनी पूर्ण रूपेण कृपा नहीं देते। तो इन सब भक्तों ने, नलकुंवर, मणिग्रीव, इन्होंने भी अपना धैर्य दिखाया। तो भगवान की कृपा अब इन्हें मिली, परंतु आगे अब इस मुद्दे पर थोड़ा गौर करेंगे कि ये जो दो अर्जुन वृक्ष, हमारे आचार्य इन दो अर्जुन वृक्षों के संदर्भ में क्या शिक्षा हमें देते हैं। भगवान इन दोनों वृक्षों के बीच में स्वयं गए और उखल को भी लेकर गए, माता यशोदा के प्रेम के बंधन को भी लेकर गए। तो ये जो दो अर्जुन के वृक्ष हैं, यमल अर्जुन इन्हें कहा गया है, यमल का अर्थ है दो। तो दो अर्जुन के वृक्ष, इनकी उपमा दी गई है कर्मकांड और ज्ञानकांड से, कि जब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के मध्य में नहीं आते तब तक हमारे जीवन का जो कर्मकांड और ज्ञानकांड है वो गिरेगा नहीं। यदि कर्मकांड और ज्ञानकांड रूपी बड़े बड़े वृक्षों को हमारे जीवन से उखाड़ फेंकना है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके भक्त को, भक्त के साथ, माता यशोदा के साथ हमें हमारे दोनों इन कर्मकांड ज्ञानकांड के मध्य में लानी होगी। भोग और त्याग, ये भोग और त्याग जो हमारे जीवन में चलता रहता है, कभी भोग करना कभी त्याग कर देना, ये दो वृक्षों को भी नष्ट करना है, इन दो यमल अर्जुन वृक्षों को भी नष्ट करना है, तो भगवान श्री कृष्ण को इनके मध्य में लाना होगा। और इस भौतिक संसार में जितने भी द्वंद्व हैं, ये भौतिक संसार बना हुआ है केवल द्वंद्वों से। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सारे जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को यदि हमें नष्ट करना है तो भगवान श्री कृष्ण को हमारे जीवन के मध्य में लाना होगा। कलयुग में कैसे लाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो अर्जुन वृक्षों की तुलना कर्मकांड ज्ञानकांड भोग त्याग संकल्प विकल्प और ये सारे जो संसार के द्वंद्व हैं इनसे की गई है। तो जैसे ही ये दोनों वृक्ष नीचे गिरे तो इन दोनों वृक्षों में से तेजस्वी दैदीप्यमान दो व्यक्ति, ये नलकुंवर और मणिग्रीव, अपने उसी शरीर में पूर्व शरीर से वो बाहर आए और आते उन्होंने प्रार्थनाएं वंदना वंदनम भगवान के प्रति, कृष्ण कृष्ण महायोगिम, भगवान को बहुत ऊंचे ऊंचे अलंकृत शब्दों में भगवान का गुणगान किया। और सबसे पहले उन्होंने नारद मुनि इनको धन्यवाद दिया। वो कहते हैं अनुजानी ही नवभूमम तव अनुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवत ऋषेर आसिद अनुग्रहात्। कि आपके जो अनुचर हैं, कौन? नारद मुनि जैसे भक्त, आपके अनुचर का हम किंकर हैं, तो भगवान के अनुचर नारद मुनि और उनके किंकर अपने आप को बोल रहे हैं। दर्शनम, केवल उनका दर्शन करने मात्र से, क्योंकि यहां पर सोचिए नलकुंवर और मणिग्रीव इन्होंने नारद मुनि का दर्शन कैसे किया? कोई ऐसा नहीं कि चलो इतने बड़े संत का दर्शन करने चलते हैं। नारद मुनि अपना दर्शन दिए, नलकुंवर मणिग्रीव ने इनका दर्शन लिया नहीं, नारद मुनि ने दिया। और ये पूरा लोचन मद घूर्णित, पूरे नशे में मदमत थे ये, और उस अवस्था में इन्होंने दर्शन किया नारद मुनि का। तो सोचिए कि बोल रहे हैं कि इस अवस्था में यदि कोई नारद मुनि का दर्शन करता है तो ये सदगति प्राप्त होती है। तो सोचिए यदि नारद मुनि का कोई दर्शन करे प्रेम भावना से तो उस व्यक्ति का क्या होगा? फिर कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, हम गणना नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति की सदगति कितनी होगी। अब यहां पर वो गुणगान कर रहे हैं भगवान का, नारद मुनि का, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इसके पश्चात इतनी कृपा मिल गई नारद मुनि और भगवान से, तो अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा इस प्रकार से मिलती है तो कृपा मिलने के पश्चात क्या कर्तव्य बनता है उस भक्त का, ये अब स्वयं नलकुंवर और मणिग्रीव अपने मुख से, बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक है ये, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, जो नलकुंवर और मणिग्रीव ने भगवान श्री दामोदर से कहा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनूनाम। यहां पर ये प्रण ले रहे हैं कौन? नलकुंवर और मणिग्रीव। वाणी गुणा अनुकथने, वो बोल रहे हैं कि भगवान अब हम आपके सामने ये प्लेज ओथ वाओ ये हम व्रत ले रहे हैं कि हमारी जो वाणी है वो केवल आपके ही गुण कथन इसमें लगने वाली है अब से, और श्रवणासु ये जो मैं हमारे कान हैं ये और कहीं पर नहीं जाने वाले, ये कान केवल आपके ही श्रवण कीर्तन में लगेंगे। हस्तौच कर्मसु ये हाथ अपने हाथ दिखा रहे हैं भगवान को, ये हमारे हाथ अब केवल आपके ही सेवा में लगने वाले हैं। मन मन केवल आपके ही चरणारविंद में लगने वाला है, स्मृति मन उसी में लगने वाला है, और हमारी दृष्टि हर समय आपके ही इसी सुंदर। तो मानो भगवान अब हंसते हुए बोल रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे थे जब भगवान ने इन दोनों वृक्षों को गिराया और ये इनका उद्धार कर दिया, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि ये क्या खेल है मेरा, मैं बंधा हुआ और मैंने इनको मुक्त किया, और ये मुक्त मुझ जैसे बंधे हुए कैदी का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए माता यशोदा के विषय में सोच रहे हैं कि क्या अनोखा प्रेम है माता यशोदा का मेरे प्रति, कि हालांकि मैं बंधा हुआ परंतु मैं जगत का उद्धार कर रहा हूं। और इसलिए भगवान ने जो कुछ ये इतना गुणगान भगवान का जब इन्होंने किया दोनों ने, तो भगवान ने तुरंत इनको चुप करा दिया। भगवान ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल श्रेय मत दो, सारा श्रेय जाता है नारद मुनि, उनके वजह से आज, नहीं तो मैं तुम जैसे लोगों को देखता तक नहीं, आकर तुम्हारा उद्धार करना तो दूर की बात है। तो जो गुणगान यदि श्रेय किसी को देना है तो नारद मुनि को दो, उनके वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। अब नलकुंवर और मणिग्री वो आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, उन्होंने प्रदक्षिणा कर ली, ये मौका फिर कहां आएगा, प्रदक्षिणा कर ली, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हम मुक्त हैं और ये बंधे हुए। तो वो आपस में इस तरह की से देख रहे थे, तो भगवान ने कहा तुमसे नहीं खोलने वाली रस्सी, प्रयास भी मत करना, सोचना भी मत, ये रस्सी किसने बांधी है तुमने देखा होगा, वो माता यशोदा, वो माता यशोदा के स्तर का कोई भक्त जब तक नहीं आता तब तक ये रस्सी को मैं स्वयं भी नहीं खोल सकता, तुम कौन सी खेत की मूली हो दोनों। तो ये दोनों फिर ठीक है, ठीक। अब भगवान अपने मुख से जैसे इन्होंने व्रत लिया कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुण अनुकथन श्रवण में लगने वाली है, तो भगवान अब आश्वासन दे रहे हैं नलकोर और मणिग्रीव। ये भगवान का आश्वासन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भगवान का आश्वासन सुनना। भगवान कहते हैं तद्गच्छतम परमौ नलकुवर साधनम संजात मई भावोवाम इप्सित परम अभव। भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है नारद मुनि के अनुग्रह कृपा के वजह से, इसलिए मैं ये आश्वासन तुम दोनों को देता हूं कि अब तुम्हारा पतन कभी नहीं होगा, तुम मेरी भक्ति से कभी च्युत नहीं होगे। ये भगवान का आश्वासन, और भगवान कहते हैं परम अभव, और तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगे अभव, जो इस भव के परे है। सोचिए यदि भगवान ऐसा एश्योरेंस आश्वासन दे रहे हैं तो भगवान के द्वारा साइन किया गया प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट। तो अब नल कुंवर और मणिग्रीव का सौभाग्य देखिए कि भगवान द्वारा आश्वासित अब ये जा रहे हैं भगवान की भक्ति में लगने के लिए। तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि हम भगवान की कुछ सेवा नहीं कर पा रहे। अरे कम से कम रस्सी तो खोल देते, कम से कम अंदर से एक गिलास पानी ले आते, इतने भगवान घसीटते हुए लाए। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, जाओ अब आगे की लीला मुझे करने दो, तुम्हारा काम हो गया, अब यहां से 9, 2, 11 चलते बनो। तो नल कुंवर और मणिग्रीव अब वहां से उन्होंने अपने उनका जो लोक वहां पर वो प्रस्थान किए। अब प्रश्न ये है कि दोनों वृक्षों को गिराया भगवान ने और इन्होंने इतने सारे प्रार्थनाएं कही, हमने प्रार्थनाएं तो ली नहीं, बहुत सी प्रार्थनाएं उन्होंने कही हैं, क्योंकि फिर यदि प्रार्थना शुरू कर देंगे तो फिर कथा इतना स्लो मोशन में चली जाएगी कि फिर श्रवण में पॉज आ जाएगा वहां पर। तो इसलिए काफी समय लगा इस सब में। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि इतनी इतनी प्रचंड आवाज हुई, आवाज के बारे में बताया गया है कि ये दोनों वृक्ष जब गिरे तो ऐसी आवाज हुई इनके गिरने की कि मानो परव्योम की तुलना यदि एक घड़े से करें, परव्योम आकाशमंडल, यदि आकाशमंडल की तुलना एक घड़े से करें तो जब कोई घड़ा फूटता है तो सोचिए आकाशमंडल रूपी घड़ा यदि कोई फोड़े तो कैसी आवाज होगी। इतने बड़े घड़े को कोई फोड़े तो कैसी आवाज होगी। तो उस प्रकार की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैली, सोचिए। तो भगवान ने, भगवान जानते थे कि नल कुंवर मणिग्रीव अब प्रार्थना बोलने वाले हैं, इसलिए उस आवाज को भगवान ने दबा दिया कुछ समय के लिए। जब तक इनकी प्रार्थना चलेगी तब तक उस आवाज को होल्ड बटन दबा दिया, और जैसे ही इनकी सब प्रार्थनाएं वगैरह हो गई, ये सब दोनों चले गए, अब जोर से आवाज सबको सुनाई दी। और स्वर्ग लोक में जो उनकी पार्टी चल रही थी सोमरस की, और बाकी ऊंचे ऊंचे लोकों में जो कुछ हो रहा था, तो वो अचानक इतनी भयंकर आवाज सुनकर वो सब भयभीत हो गए कि ये क्या आवाज कहां से। सभी डर गए केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, कौन हो सकते हैं वो एक व्यक्ति, नारद मुनि। नारद मुनि सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने जब वो आवाज सुनी तो नारद मुनि समझ गए कि मैंने जिन्हें 100 स्वर्गीय वर्ष पहले श्राप दिया था, ये कहते हुए कि वासुदेव सानिध्यम वो आएंगे और वो अपना सानिध्य देंगे और तुम दोनों का उद्धार करेंगे, तो नारद मुनि इस बात को सोचते हुए देखते हुए कि मेरे कहे हुए वचन को मेरे प्रभु ने सिद्ध किया, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, इतने रोने लगे नारद मुनि इस बात को सोचते हुए कि मेरे भगवान मेरे वाक्यों को सिद्ध करने के लिए इतना कुछ किए। तो सारे ब्रह्मांड में दहशत फैल गई, परंतु नारद मुनि वो जानते थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, रो रहे थे, अश्रु गंगा जमुना जैसे बह रही थी। अब यह आवाज जब इतनी जोर से हुई तो यदि अब सोचिए कि इतनी प्रचंड आवाज, भयंकर आवाज कि सबसे ऊंचे लोकों तक, वहां तक सबको हिला दिया, तो सोचिए वो जो ग्वाल बाल वहां पर खेल रहे हैं उनके कानों के पर्दों को क्या हुआ होगा। और सारे ब्रजवासी यशोदामयी जो अंदर रसोई घर में थी, इन सब के कानों के पर्दों को क्या हुआ होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभी गोपगण वहां पर भागते हुए आए, गोपानंद देह श्रुत्वा, जब उन्होंने सुना गोप नंद आदि, नंद महाराज और आदि बाकी सारे सभी गोप भागते हुए वहां पर गए, तो उनके क्या उनके कानों के पर्दे फटे नहीं। अरे जब भगवान ने कह दिया है नमे भक्त प्रणश्यति, तो उनके भक्तों के कानों के पर्दों को कैसे वो फटने के लिए अनुमति देंगे। तो भगवान ने स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति से सभी ब्रजवासियों के कान के पर्दों को बचाया। तो सोचिए भगवान कितने छोटे छोटे से पहलुओं को सोचते हैं कि ये दोनों वृक्ष गिरेंगे, इतनी जोर से आवाज होगी तो मेरे जो नित्य पार्षद ब्रजवासी हैं उनके कानों के पर्दों को कैसे बचाऊं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारे बारे में सोचते नहीं है, भगवान हमारे बारे में जो उनके भगवान केवल उनके भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें भूल जाते हैं, या कई बार ये भी नहीं कहें, क्योंकि भूलना तब होता है जब याद आती है किसी की, है ना। तो इतनी भयंकर आवाज जब हुई तो ये सब भागते हुए आए, नंद गोपादि सब भागते हुए आए वहां पर, और आकर वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, स्थिति का मुआयना किया, तो नंद महाराज देख रहे हैं और बाकी उपनंद इत्यादि वो सब देख रहे हैं, ये इतने बड़े वृक्ष अचानक कैसे गिर गए, न तो कोई तूफान आया वृंदावन में, न किसी ने कुल्हाड़ी से काटकर इन्हें गिराया, और फिर इन्होंने जाकर सोचिए वहां पर भगवान श्री कृष्ण बीच में हैं, उनको कोई नहीं देख रहा, खाली मुआयना कर रहे हैं दोनों वृक्ष गिरे कैसे, तो जाकर जड़ों की तरफ देख रहे हैं कि जड़, कई बार यदि वृक्षों की जड़ यदि सड़ जाती है तो वृक्ष गिर जाते हैं, परंतु जड़ एकदम ताजा पक्की जड़, तो जड़ भी एकदम ताजा है और पक्की है, और इतने बड़े वृक्ष ऐसे गिरे, कवि कर्णपुर कहते हैं मानो माता पृथ्वी, माता पृथ्वी जो इन दोनों वृक्षों को अब तक पकड़े हुए थी, तो माता पृथ्वी इतना भाव विभोर हो गई, क्यों, क्योंकि माता पृथ्वी के ऊपर अब भगवान रेंगते हुए गए, अपने चरण और घुटनों को स्पर्श करते हुए, हस्तों को स्पर्श करते हुए, सोचिए चरण घुटने और दोनों हस्त, तो माता पृथ्वी को इससे बड़ा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ था, या तो केवल चरण स्पर्श होते थे, परंतु आज तो हाथ घुटने चरण ये सब एक साथ, तो माता पृथ्वी मानो दंडवत दे रही थी किसे, भगवान को, और ये जो दो वृक्ष ये माता पृथ्वी के दोनों हाथ ऐसे इस दंडवत देते ना भगवान को, तो ये दोनों हाथ माता पृथ्वी के दंडवत देते हुए भगवान को, इस प्रकार से ये दोनों प्रतीत हो रहे थे। और नंद गोप आदि इन्होंने उन्हें, नंद महाराज को तो कुछ पता ही नहीं था कि भगवान को बांधा भी गया था, तो नंद महाराज ये प्रश्न पूछ रहे, ये उखल यहां बाहर कैसे आया, तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूम्याम निपति तौ तत्र ददृशुर यमल अर्जुन बभ्रमोस्तद अविज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम। पतन कारणम, गिरने का जो कारण, लक्ष्य सामने है, कौन? भगवान। अरे वो बोल रहे हैं मैंने गिरा है भाई, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो जो सर्व कारण कारणम है और अब पतन कारणम, इन दोनों वृक्षों के पतन का कारण, गिरने का कारण, वो वहां पर है परंतु इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर देखिए कि नंद महाराज और अन्य गोप आदि, इनको जो सभी कारणों के कारण हैं और इन वृक्षों के गिरने के जो कारण हैं वो सामने है परंतु इनको नहीं दिख रहा। तो क्या ये किसी शुद्ध भक्त के भक्ति का लक्षण है? जैसे कि हिरण्यकशिपु और रावण, इन्होंने भी भगवान को भगवान की तरह नहीं देखा। सर्व कारण कारणम, तो यदि हिरण्यकशिपु और रावण जैसे वो भगवान को सर्व कारण कारणम नहीं मान रहे और यहां पर नंद महाराज भी नहीं मान रहे, तो क्या वो एक ही स्तर पर हैं? नहीं, वो भगवान की महामाया शक्ति के कारण भगवान को नहीं देख पा रहे जो सर्व कारण कारणम है। और यहां नंद महाराज और यशोदा मई भगवान की योग माया शक्ति के कारण भगवान को सभी कारणों का कारण नहीं देख पा रहे। बहुत बड़ा अंतर है ये। और इसके बीच में कई बार ब्रह्मा जी जैसे भगवान के भक्त वो भी भ्रमित हो जाते हैं, भगवान को सभी कारणों का कारण नहीं देख पाते। वो इसलिए क्योंकि उन्हें जो ऐश्वर्य मिला है कभी कई बार उस ऐश्वर्य के कारण उनके ऊपर एक पर्दा सा आ जाता है। तो ये तीन श्रेणी है, हिरण्यकशिपु रावण की श्रेणी, ब्रह्मा जी की श्रेणी और नंद महाराज की श्रेणी। परंतु बहुत अंतर है तीनों में जब वो लक्ष्य पतन कारण नहीं देख पाते। अब नंद महाराज और बाकी सारे गोपगण वो पता लगाना चाहते थे कि ये हर रोज उपद्रव कहां से हो रहा है, ये भी हमारे बेटे के संदर्भ में होता है। कभी कोई पूतना जैसी राक्षसी आ जाती है, कभी तृणावर्त जैसा असुर, शकटासुर, पार्किंग में खड़ा हुआ ट्रक गिर गया, शकटासुर, अरे पार्किंग में खड़ा किया था, अचानक विध्वंस होके सब कुछ गिर गया। खैर कलयुग में तो बोल सकते हैं कि पार्किंग में खड़ी हुई साइकिल या जो भी कुछ उड़ जाए, परंतु यहां पर तो ये अचरज कर रहे थे कि अब देखो ये यहां पर ये दोनों वृक्ष गिरे और ये बीच में फिर से। तो अब पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तहकीकात। तो वहां पर कौन थे जिन्होंने अपने आंखों से इस दृश्य को देखा, गवाह? तो गोप, वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो पहले तो नंद महाराज ने सोचा कि इनको क्या पूछना, इनको क्या पता। फिर भी एक गोप ने, वरिष्ठ गोप, उन्होंने बच्चों को बुलाया, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, ऐसे बुलाया। और कई बार यदि छोटे छोटे बच्चों को यदि कुछ पूछवाना होता है तो थोड़ा उनको पुचकारना पड़ता है, टॉफी देनी पड़ती है, बेटा बेटा बोलो मम्मी कहां गई आज। तो इनको बुलाया, इनको बुलाकर पूछा कि देखो ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे, खेलना बंद करो, हमारी तरफ देखो। तो सभी देखने लगे। अच्छा बोलो कि क्या हुआ? तो गोप बोले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं, ये कैसे गिर गए दोनों वृक्ष? अच्छा ये हम बताते हैं, ये कान्हा ये उखल से बांध दिया था माता यशोदा ने, तो ये कान्हा उखल को घसीटते हुए, और वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई हाथी किसी तिनके को घसीटे, हालांकि हाथी तिनके को नहीं घसीट सकता, बहुत छोटा होता है तिनका, मानो हाथी क्रिकेट बैट को घसीटे। ये उदाहरण में सब जग गया। तो ऐसे बोल रहे थे, ये घसीटा इसने, तो उन्होंने कहा ये कान्हा ने घसीटा उखल को, हाँ ये कान्हा ने घसीटे उखल को, और उखल को हम देख रहे थे, हम खेलना बंद कर दिया, हम देख रहे थे, उखल को तिरछा अटकाया, एक झटका दिया, दोनों वृक्ष नीचे हो गया, जाए खेलने। और एक गोप ने कहा नहीं 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 नहीं, एक और चीज हुई, वो जैसे ही वृक्ष गिरे, दो ऐसे एकदम तेजस्वी व्यक्ति वो बाहर निकले, और हम उन्हें देखने लगे, ये वृक्ष से व्यक्ति बाहर आ गए, बहुत सुंदर दिख रहे थे, तुम लोग सबसे बहुत सुंदर थे वो, और इतने सुंदर, और वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, और ये कान्हा उनका ही गुणगान कर रहे, इनको पता नहीं महान योगी आदि पुरुष ये सब कुछ बोल रहे थे, अपने कान्हा को ये सब बोल रहे थे। और फिर वो घूमने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे कान्हा के यहां वहां से, और फिर कान्हा मुस्कुराते उनको कहे जाओ, तो चले गए। अब हम जाए तो नंद महाराज कहते हैं, अरे तुम लोग मूर्ख हो, इनसे क्या पूछते हो, ये अज्ञ बालक, इनको क्या पता। तो ये अब थोड़ा इंसल्ट हो गया है इन बच्चों का, बोले अरे हमने जो देखा, आपने पूछा, हमने बोला, तो यदि विश्वास नहीं तो पूछा क्यों, नहीं पूछा होता हमसे, कुछ नहीं बताएंगे अगली बार से। तो यहां पर ये बात समझ में आती है कि ये ग्वाल बाल शुद्ध कृष्ण कथा सुना रहे हैं इनको, अभी हुई कृष्ण कथा सबसे ताजा वो सुना रहे हैं, और एज इट इज यथारूप, परंतु इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। तो इस पर हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण कथा चाहे किसी के भी मुख से आए, यदि वो यथारूप कृष्ण कथा सुना रहा है, चाहे वो 5 वर्ष का बालक भी क्यों ना हो, या 2 वर्ष का बालक भी क्यों ना हो, या वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, वो प्रामाणिक है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, सामने कौन कौन है, उनके पिता व्यासदेव, नारद मुनि, अत्रि मुनि, अगस्त्य मुनि, मैत्रेय मुनि, ये सारे बड़े बड़े मुनि, अंगिरा मुनि, ये सारे बड़े ऋषि मुनि सामने बैठे हुए हैं, और कोई गिनती नहीं, सारे देवी देवता ये सब बैठे हुए हैं, और सुखदेव गोस्वामी की उम्र क्या है, 16 वर्ष, और किसी ने एक बार भी ये प्रश्न नहीं उठाया कि अरे भाई हम इतने वरिष्ठ, इतनी हमारी आयु है, ये बालक से क्या सुने हम, कपड़े भी नहीं पहने। तो उन्होंने उम्र नहीं देखी। एक होता है जो वयोवृद्ध जिसे कहते हैं, और एक व्यक्ति होता है ज्ञानवृद्ध। तो यहां पर हालांकि वयोवृद्ध नहीं थे सुखदेव गोस्वामी और ये बच्चे भी जो कृष्ण कथा सुना रहे थे, परंतु ज्ञानवृद्ध। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु कोई कम ज्ञानी नहीं था, हिरण्यकशिपु के अंदर बहुत ज्ञान था, तत्व ज्ञान, वो भी शास्त्रों का। तो हिरण्यकशिपु को 5 वर्षीय प्रहलाद महाराज लेक्चर दे रहे, क्या करना चाहिए तुम्हें, जाओ वन में जाओ संन्यास लो। ध्रुव महाराज, तो इन सबको यदि हम देखें तो इनकी आयु कुछ नहीं थी ज्यादा, पर उनके ज्ञान के कारण उन्हें प्रामाणिक भगवान की कथा सुनाने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए हमारा श्रवण भी ये सब नियमों पर आधारित नहीं होना चाहिए, कि कहां सुन रहे हैं और वो व्यक्ति उसकी उसकी आयु कितनी है। यदि बहुत आयु का है तो ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत आयु का कोई व्यक्ति यदि सुना रहा है जिसकी दाढ़ी भी जमीन तक जा रही है और वो यदि कुछ भी कहे, समझ में भी नहीं आया, नहीं नहीं बहुत पहुंचे हुए हैं, तो यहां पर ये छोटे छोटे से गोप ये सिखा रहे हैं कि हमने शुद्ध कृष्ण कथा सुनाई और विश्वास नहीं हमारी शुद्ध कृष्ण कथा पर। यही संसार का नियम है, जब शुद्ध कृष्ण कथा सुनाई जाए तो कोई विश्वास नहीं करता, और फिर टीवी पे जब सीरियल दिखाया जाता तो उस पर सब विश्वास करते हैं। तो अब समय आ गया, नंद महाराज ने अब तक तो केवल मुआयना किया वृक्षों का, कैसे गिरे, उखल बाहर कैसे आया, ये कान्हा बीच में कैसे है। अब ये सब देखने के बाद पता लगा कि ये इसकी रस्सी बंधी हुई है, इससे ये रस्सी कैसे बंधी हुई है। तो तुरंत नंद महाराज सब कुछ भूल गए, अरे मेरे कान्हा को बांधा हुआ है। तो नंद महाराज से रहा नहीं गया, तुरंत नंद महाराज बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर से कूदे। सभी को लगा ये अचानक नंद महाराज कूदे क्यों, कूदकर उलूखलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्वमात्मजम, दिल थाम के बैठिए अब बंधन खुलने वाला है। विलोक्य नंद प्रहसत वदनो विमोचहा, कि नंद महाराज अब सब समझ गए कि ये बंधन किसने बांधा होगा, हमारी उसने। तो प्रहसन हंसते हुए नंद महाराज वो बंधन खोल रहे हैं। ये बंधन जो स्वयं भगवान नहीं खोल पाए, नलकुवर मणिग्री अन्य कोई गोप नहीं खोल पाए, नंद महाराज ने एक ही झटके में खोल दिया। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस में बांधा गया था ये बंधन, केवल वात्सल्य रस का भक्त ही उसे खोल सकता था। परंतु भगवान नंद महाराज हंस क्यों रहे थे खोलते समय? नंद महाराज इसलिए हंस रहे थे कि बेटा तुम हर समय उसकी गोद में जाते हो बैठने के लिए, देखो क्या किया उसने और मैं क्या कर रहा हूं। तो अब तक यशोदा माई भागते हुए आ गई थी, तो यशोदा को चिढ़ाने के लिए नंद महाराज दिखाते हुए खोल रहे हैं और कान्हा को बोल रहे हैं, आज से किसकी गोद में जाओगे, उसकी जो दंड देती है इतना। तो कान्हा भी समझ गए कि किसकी साइड अब लेनी चाहिए। तो कान्हा तुरंत नंद महाराज के गोद में जाकर बैठते हैं और सभी गोप को कहते हैं, आज से मुझे कोई यशोदा नंदन नहीं बुलाएगा। और एक कोने से यशोदा माई को देखते हैं, थोड़ा डर भी है, परंतु अब नंद महाराज के गोद में बैठे हैं तो स्थान प्रधाना कि स्थान बहुत प्रधान है। अब नंद महाराज की गोद में बैठे, कोई आज से मुझे यशोदा नंदन नहीं, आज से मेरा नाम है नंद नंदन। नंदन महाराज नंद महाराज के गाल को ऐसे लगाते, आज से मेरा नाम है नंद नंदन, सभी मुझे क्या बुलाओगे, नंद नंदन, कोई बुलाना मत यशोदा नंदन। तो यशोदा माई तो रोने लगी इतना जोर जोर से। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे लगे कि मुझे इतना रुलाया इस दामोदर लीला में, तो मैं क्या छोड़ने वाला था। अरे जो मुझे रुलाता है मैं उसे भी रुलाता हूं। तो अब ये श्री दामोदर जो पहले रो रहे थे, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिजंतम, अब इन्होंने अपनी माता को इस प्रकार से रुलाया। और माता यशोदा देख रही है कि मुझे क्षमा कर दे कान्हा, क्षमा नंद नंदन। नंद महाराज को कहे, चलो चलो हम चलते, चलो यहां से कहीं और चलते। तो यहां पर अब सुखदेव गोस्वामी उन्हें दो प्रकार की भावनाएं हो रही। सुखदेव गोस्वामी को बहुत प्रसन्नता हो रही कि दाम बंधन खुल गया, परंतु उसके साथ साथ भगवान का वो जो सुंदर उनकी जो छवि है उखल बंधन से बंधे हुए, वो अब लीला में समाप्त हो रही है। इसलिए अब जब भगवान खुल गए हैं इस बंधन से, तो अब सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को सुनाएंगे कि अब गोपियों को विशेष रूप से, जो वरिष्ठ गोपियां थी उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने और कौन कौन सी, हालांकि भगवान केवल बोल रहे थे माता यशोदा, परंतु माता यशोदा के बिना एक क्षण भी भगवान नहीं रह सकते थे, तो भगवान को बहुत कष्ट लगा ये सब बोलने में। तो भगवान अब माता यशोदा, रोहिणी और अन्य गोपियों को अगले अध्याय में कितना प्रसन्न करेंगे, ये सुखदेव गोस्वामी अब आगे सुनाने जाने वाले हैं। इसलिए आज भगवान श्री दामोदर का उखल बंधन खोल दिया हमने। बोलो श्री दामोदर भगवान की जय। परंतु जुगल किशोर देव प्रभु ने कल कहा था कि यदि उखल बंधन खोल भी दिया तो भी हम दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, तो उनके आज्ञा के अनुसार यदि आप लोग चाहें तो आज भी दामोदर अष्टकम हम गाएंगे, परंतु आज शायद आज क्या है, अच्छा इस ड्रामा के बाद एक और ड्रामा है अभी, तो आप लोग सब ध्यान से देखिएगा। हमारे बाल गोपाल संडे स्कूल के छोटे छोटे गोप और गोपियां कौन सा ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।